مکابیین کی دوسری کتاب ساتواں باب، سات بھائیوں کی شہادت۔ اور یہ بھی واقع ہوا کہ سات بھائی ماں اپنی ماں کے گرفتار کیے گئے، اور بادشاہ نے انہیں کوڑوں اور چابکوں کے عذاب سے مجبور کرنا چاہا کہ خنزیر کا ممنوع گوشت کھائیں، تو ان میں سے ایک نے سب کی طرف سے بات کر کے کہا کہ تو ہم سے کیا پوچھتا اور کیا بات کہلوانا چاہتا ہے؟ ہم تو مرنا پسند کرتے ہیں، پر اپنے آبائی قوانین کے خلاف عمل نہ کریں گے۔ تب بادشاہ غضبناک ہو گیا اور حکم دے دیا کہ کڑاہ اور دیگیں گرم کی جائیں، اور جو ہی وہ خوب گرم ہو گئیں تو اس نے حکم دیا کہ جس نے پہلے بات کی تھی اس کے بھائیوں اور اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی زبان کاٹی جائے اور اس کی کھوپڑی اتاری جائے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں۔ جب وہ سراسر لنجا ہو گیا تو حکم دیا کہ اسے آگ کے پاس لے جائیں اور بھونیں، کیونکہ اس میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ لیکن جس وقت کڑاہ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا تو باقی بھائی اور ان کی ماں ایک دوسرے کو ہمت بندھا رہے تھے تاکہ موت کے لیے دلیری سے قدم آگے بڑھائیں، اور انہوں نے کہا کہ خداوند خدا دیکھتا ہے اور وہ بل ضرور ہم پر رحم کرتا ہے، جیسے موسیٰ نے اپنے نغمہ شہادت میں کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہوگا۔ اور جب پہلے نے اس طرح وفات پائی تو وہ دوسرے کو عذاب کی جگہ میں لے آئے اور اس کی کھوپڑی کی کھال ماں بالوں کے اتار کر اس سے پوچھنے لگے کہ پیشتر اس کے کہ تیرے جسم کے عضو عضو کو عذاب دیا جائے، کیا تو یہ کھائے گا یا نہیں؟ اس نے اپنی مادری زبان میں جواب دیا کہ نہیں، اس لیے انہوں نے اسے بھی پہلے کے سے سب عذاب چکھائے۔ اور جب وہ جان بلب ہوا تو اس نے کہا کہ اے مرد شریر، تو ہماری اس عارضی زندگی کو تو لے لیتا ہے، پر شاہ کونین ہمیں جو اس کے شرائع کی خاطر مرتے ہیں ابدی زندگی کے لیے اٹھائے گا۔ اس کے بعد وہ تیسرے کو عذاب دینے لگے۔ اس نے جو ہی حکم پایا اسی دم زبان باہر نکالی اور دلیری سے اپنے ہاتھ پسار دیے اور دلیری سے کہا کہ آسمان کی طرف سے یہ عذاب مجھے ملے، اور اس کے شرائع کی خاطر میں انہیں بھی حقیر جانتا ہوں، پر میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہیں پھر مجھے عطا کرے گا۔ تب بادشاہ اور اس کے ساتھی اس نوجوان کی بہادری سے حیران ہو گئے، جو عذاب کو بالکل ناچیز جانتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو چوتھے کو اسی طرح ایذا और अजाब दिया। और जब वो नजा की हालत में था तो उसने कहा कि आदमियों के हाथ से कत्ल किया जाना और खुदा से उठाए जाने की उम्मीद रखना और इंतजारी करना तसल्ली की बात है, लेकिन तेरी कयामत हयात के लिए ना होगी। बाद इसके पांचवां लाया गया और उसे अजाब दिया गया, और उसने बादशाह पर निगाह करके कहा कि तू इख्तियार रखता है कि आदमियों से जो चाहे सो करे, हालांकि तू फानी है, लेकिन गुमान न कर कि खुदा ने हमारी कौम को तर्क कर दिया है। थोड़ी देर सबर कर तो तू उसकी शदीद कुदरत देखेगा कि वो तुझे और तेरी नस्ल को कैसे अजाब देगा। इसके बाद छठा लाया गया और जब वो मरने को था तो उसने कहा कि बतालत से धोखा ना खा, हम अपने ही सबब से ये सब कुछ सहते हैं, क्योंकि हमने अपने खुदा का गुनाह किया था और इसी वजह से ये अजीब बातें हम पर वाक्य हुईं। लेकिन तू ख्याल ना कर कि तू बेसजा छूटेगा, क्योंकि तूने खुदा ही से जंग बर्पा करने की जुर्रत की है। खसूसन इनकी मां बहुत ज्यादा तारीफ और नेक जिक्र के लायक है, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने सात बेटों को हलाक होते देखा और उस तवक्कुल के सबब से जो वो खुदावंद पर रखती थी हिम्मत ना हारी। वो मादरी जुबान में उन सब की हौसला अफजाई करती रही और बुलंद ख्यालात से मामूर होकर अपनी निस्वानी तबीयत को मर्दाना दलेरी से ये कह कह कर मजबूत करती रही कि मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे शिकम में किस तरह सूरत पकड़ी, क्योंकि मैंने तुम्हें ना दम और ना हयात बख्शी और ना मैंने तुम्हारे अज़ा की तरतीब दुरुस्त की, लेकिन खालके को नैन ने ये किया है, वही इंसान के वजूद में आने का मुरत्तिब है, जिस तरह के वो हर शय के सादिर होने का मुदब्बिर है। बस वही अपनी शफकत से दम और हयात दोबारा तुम्हें देगा, इसलिए कि तुम इस वक्त उसके शराय की खातिर अपने आप को हकीर जानते हो।
अंताकुस ने ख्याल किया कि मेरी तौहीन हो रही है, और उसे शक था कि ये हकारत से मेरी बाबत बात करती है, और चूंकि सबसे छोटा अनुज बाकी था, वो ना फकत अल्फाज ही से उसे मनाने लगा बल्कि कसम खाकर उसे यकीन दिलाने लगा कि अगर तू अपने आबाई कवानीन को छोड़ दे तो मैं तुझे दौलतमंद और खुशहाल कर दूंगा और तुझे अपना रफीक बनाऊंगा और सरकारी ओहदों पर मामूर कर दूंगा। और जब उस लड़के ने इस बात को मुतलिक ना माना तो बादशाह ने उसकी मां को बुलाया और उसे तरगीब दी कि लड़के को अपनी जान बचाने की सलाह दे। और जब उसने उससे कसीर गोई से इसरार किया तो उसने वादा किया कि मैं अपने बेटे को मनाऊंगी, और वो उसकी तरफ झुकी और बेतरस जालिम को धोखा देकर मादरी जुबान में उससे यूं कहा कि ऐ बेटे, मुझ पर तरस कर, मैंने अपने बतन में तुझे 9 महीने तक उठाया और 3 बरस तक तुझे दूध पिलाया और मैंने तेरी परवरिश की और इस उम्र तक तुझे पहुंचाया। ऐ मेरे बच्चे, मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि आसमान और जमीन पर नजर कर और उनकी मामूरी को देखकर जान ले कि खुदा ने इस सब कुछ को अदम से खलक किया और कि नौए इंसान इसी तरीके से वजूद में आई। बस तू इस जिलाद से ना डर, बल्कि अपने भाइयों के लायक बन और मौत मंजूर कर, ताकि मैं तुझे यौम रहमत को उनके साथ फिर हासिल कर लूं। जब वो ये कह रही थी तो लड़का बोल उठा कि तुम किस बात के मुंतजर हो, मैं बादशाह के हुक्म को नहीं मानता, मैं उस शरीयत का हुक्म मानता हूं जो मूसा की मार्फत हमारे बाप दादा को दी गई थी। और ऐ इब्रानियों की इन तमाम आफात के मूजिद, तू खुदा के हाथ से हरगिज ना छूटेगा। हम तो अपनी खताओं के बायस सजा पाते हैं, पर अगरचे जिंदा खुदावंद हमारी तो बीखो तादीब के लिए कुछ अरसे तक हमसे नाराज है, तो भी वो अपने बंदों की तरफ फिर मायल होगा। लेकिन ऐ शरीर और सब आदमियों से ज्यादा खबीस, तू ना हक तकबुर ना कर और बातिल तवक्कुल से अपने आप को लोरी ना दे, जबकि तू उसके बंदों के खिलाफ अपना हाथ उठाता है, क्योंकि तू खुदाए कदीरो बसीर की अदालत से छूटा हुआ नहीं है। और हमारे भाइयों ने दम भर के दुख पर सब्र करके खुदा के अहद के मुताबिक हयात अब्दी में से पी लिया है, लेकिन खुदा की अदालत से तुझ पर वो अजाब नाजिल होगा जिसका तू बबायस अपने गरूर के सजावार है। मैं भी अपने भाइयों की मानंद अपने आबाई कवानीन के लिए जिस्म और जान देता हूं, और मैं खुदा से मिन्नत करता हूं कि वो जल्द हमारी उम्मत की तरफ रजू करे और मसाइब और आफात लाकर तुझसे इकरार करवाए कि वही अकेला खुदा है और कि मुझ में और मेरे भाइयों में कादर मुतलिक का वो कहर इख्तिताम पा जाए जो इंसाफ से हमारी उम्मत पर पड़ा है। तब बादशाह नहायत गजबनाक हुआ और इस तहकीर की बर्दाश्त ना कर सका और उसके भाइयों की निस्बत उसका अजाब ज्यादा कर दिया। और इसी तरह ये भी पलीद हुए बगैर और खुदावंद पर कामिल तवक्कुल रखकर रहलत कर गया और आखिरकार अपने बेटों के बाद मां ने भी वफात पाई। तनावुले जबीहा और ईजाओं की शिद्दत के बारे में इतना ही काफी है।